सुजीत कुमार की आवाज में प्रश्न पत्र सप्तम पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो कि देवेंद्र नाथ शर्मा द्वारा रचित रचना है की रिकॉर्डिंग होने जा रही है, जिसमें मैं मैथ्यू आर्नोल्ड शीर्षक पढ़ रहा हूँ। इनका जीवन 1822 से 1888 तक है। मैथ्यू आर्नोल्ड को महान आधुनिक आलोचक कहा गया है क्योंकि आधुनिक अंग्रेजी आलोचना का आरंभ मैथ्यू आर्नोल्ड से होता है। आर्नोल्ड स्वयं कवि थे और 1857 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। कहने की आवश्यकता नहीं कि ऑक्सफोर्ड में अंग्रेजी का प्रोफेसर होना बड़े सम्मान और गौरव की बात है। इस पद का लाभ आर्नोल्ड को दो प्रकार से हुआ। एक तो उन्हें आलोचना संबंधी अपने विचारों को एक अत्यंत प्रबुद्ध वर्ग के सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिला। दूसरे पदमूलक गौरव के कारण उन विचारों के प्रसार की अनुकूल भूमि भी प्राप्त हुई। आर्नोल्ड ने आलोचना का काम पेशे के रूप में किया। जो विश्वविद्यालयों में साहित्य के अध्यापक होते हैं उन्हें आलोचक बनना ही पड़ता है, चाहे वे दूसरों के सिद्धांतों का उपयोग करें या अपने मनन चिंतन के आधार पर कुछ मौलिक योगदान करें। जैसा इलियट ने कहा है, प्रत्येक कवि अनिवार्यतः आलोचक भी हुआ करता है। जो अच्छा आलोचक नहीं होता वह अच्छा कवि भी नहीं हो सकता, क्योंकि रचना के क्रम में विषय के चयन से लेकर उसके विकास विस्तार अभिव्यंजना की भंगियों और उपयुक्त शब्द प्रयोगों तक में विश्लेषणात्मक क्षमता की आवश्यकता पड़ती है। कवि आलोचना लिखे या न लिखे, यदि उसके काव्य में उत्कर्ष है तो सिद्ध है कि उसमें उत्कृष्ट आलोचना के भी गुण हैं। स्वयं कवि होने के कारण आर्नोल्ड को काव्य की अंतर्निहित विशेषताओं की पहचान थी, जिनकी सहायता से वे अपनी काव्य विषयक धारणाएं प्रस्तुत ही नहीं संशोधित परिमार्जित भी कर सकते थे। इस तरह कवि के साथ काव्य का अध्यापक होना आलोचक आर्नोल्ड के निर्माण में लाभकर सिद्ध हुआ। कहा जाता है कि लेखक या कलाकार देश काल और परिस्थिति की उपज ही नहीं होता, वह इनसे नियंत्रित और निर्देशित भी हुआ करता है। आर्नोल्ड भी इसके अपवाद नहीं थे। उनकी आलोचना पर विचार करते समय उनके पहले की परिस्थितियों पर ध्यान देना उपयोगी होगा। औद्योगिक क्रांति की जो लहर इंग्लैंड में उठी उसने एक और विज्ञान को अकल्पनीय महत्व प्रदान किया, दूसरी ओर धर्म तथा काव्य पर आघात किया। धर्म को लोग अंधविश्वास समझने लगे और विज्ञान से जीवन पद्धति में ऐसा परिवर्तन आने लगा जिससे भावुकता कुंठित होने लगी। परिणामतः काव्य के प्रति आकर्षण कम होने लगा। चारों ओर कोलाहल जैसी सुनाई पड़ने लगा कि काव्य का युग समाप्त हो गया, अब तो विज्ञान का युग है। टॉमस लव पिकॉक ने काव्य की निष्प्रयोजनता प्रमाणित करने के लिए एक पुस्तिका ही लिख डाली, जिसमें उन्होंने कहा कि ज्ञान और तर्क के युग में काव्य केवल बर्बरता का अवशेष है। इसके उत्तर में प्रसिद्ध रोमांटिक कवि शेली को दी डिफेंस ऑफ पोइट्री नामक प्रसिद्ध निबंध लिखना पड़ा। 19वीं शताब्दी के आरंभ से ही इंग्लैंड में काव्य और विज्ञान के आपेक्षिक महत्व का विवाद चल पड़ा था और दोनों खेमों ने अपने अपने पक्ष की स्थापना के लिए युक्तियां प्रस्तुत करनी प्रारंभ कर दी थी। जैसा ऊपर कहा गया है, विज्ञान का आक्रमण केवल काव्य पर ही नहीं हुआ, धर्म पर भी हुआ और संस्कृति भी अचूती नहीं रह सकी। तात्पर्य कि विज्ञान ने एक साथ काव्य धर्म और संस्कृति के मूलाच्छेद का उपक्रम किया। जो लोग काव्य धर्म एवं संस्कृति के संस्थापित मूल्यों के पक्षधर थे उन्होंने विज्ञान के प्रत्याख्यान का बीड़ा उठाया। आर्नोल्ड इस श्रेणी के विचारकों में अन्यतम हैं। उन्होंने बड़ी प्रौढ़ी से काव्य की विपुल संभावनाओं को सामने रखा और यहाँ तक कहा कि काव्य धर्म का ही नहीं विज्ञान का भी स्थान लेगा, क्योंकि उसका प्रयोजन केवल आनंद ही नहीं जीवन की आलोचना भी है। आर्नोल्ड का कहना था कि काव्य और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। विज्ञान का और बहुत दूर तक धर्म का भी क्षेत्र सीमित है। विज्ञान मनुष्य की कोमल भावनाओं को सहलाने में असमर्थ है। धर्म से भी यह काम अंशतः ही संपन्न होता है। इसके प्रतिकूल काव्य का प्रभाव भाव और कल्पना पर तो पड़ता ही है, बुद्धि पर भी पड़ता है, जिससे मनुष्य की क्रिया शक्ति को उचित दिशा मिलती है। अर्नाल्ड ने प्रत्येक क्षेत्र में पूर्णता को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। उनके अनुसार संस्कृति पूर्णता का ही दूसरा नाम है और काव्य संस्कृति का अन्यतम साधन है। इस विषय को उन्होंने कल्चर एंड एनार्की नामक विस्तृत लेख में भलीभांति स्पष्ट किया है। अर्नाल्ड ने काव्य में रोमांटिक मान्यताओं का खंडन किया है और प्राचीन क्लासिकल सिद्धांतों की पुनर्स्थापना पर बल दिया। उन्होंने पुरातन यूनानी उपलब्धियों को अनुकरणीय बताया और उन्हें अपनाने का आग्रह किया। यूनान के काव्य शास्त्रियों में अरस्तु उनके आदर्श थे और होमर के महाकाव्य तथा यूनानी नाटककारों के दुकान तक उनके साहित्यिक प्रतिमान के निर्धारक। अर्नाल्ड को यूनानी साहित्यिक आदर्शों का उद्धारक या उज्जीवक कह सकते हैं। इस तरह अर्नाल्ड एक ऐसी सीमा रेखा पर खड़े दिखाई देते हैं जो प्राचीन और नवीन का परंपरा एवं आधुनिकता का मिलन बिंदु है। उन्होंने आलोचना की जिस पद्धति और शिल्प का विकास किया वह बाद के आलोचकों द्वारा ग्रहण किया गया। अर्नाल्ड काव्य में सरलता स्वाभाविकता आदि अभिजात गुणों के समर्थक थे जिनका प्रयोग उन्होंने काव्य में ही नहीं आलोचना में भी किया। अर्नाल्ड ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, अरस्तु या कॉलरीज के समान कोई मौलिक उद्भावना भी नहीं की। उनके विचार भाषणों के लिए या पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखित छोटे बड़े प्रकीर्ण निबंधों में व्यक्त हुए हैं। मौलिक उद्भावना की दृष्टि से उनका महत्व भले ना हो पर आलोचना की स्वायत्तता स्थापित करने का तथा उसे व्यवस्थित रूप देने का श्रेय अर्नाल्ड को अवश्य दिया जाएगा। अर्नाल्ड की धारणा थी कि महान काव्य के लिए उसकी विषय वस्तु उद्दात होनी चाहिए और शैली भव्य। साहित्यिक क्षितिज पर अर्नाल्ड के आविर्भाव के पूर्व इंग्लैंड में स्पैज़मोटिक नामक एक काव्य आंदोलन चल रहा था जिसकी प्रमुख मान्यताएं थीं समसामयिक विषयों का वर्णन और ख कवि की निजी मनोदशाओं की अभिव्यक्ति। स्पैज़मोटिक धारा के काव्यों में दो विशेषताएं खुलकर आईं, विचार और भाव का अतिरेक तथा उपमा रूपक आदि अलंकारों का अति प्रयोग। ये दोनों चीज़ें अर्नाल्ड को अनभिमत थीं। उनकी धारणा थी कि सामयिक विषयों पर लिखा गया काव्य चिरस्थायी नहीं हो सकता। एक सीमा तक अर्नाल्ड की यह मान्यता सही भी है। सामयिक विषयों की उपादेयता समाप्त हो जाने के बाद उनका काव्य भी समाप्त हो जाता है। भारत में ही स्वाधीनता आंदोलन की अवधि में बहुत सारी कविताएं लिखी गईं जो तब पर्याप्त लोकप्रिय थी किंतु आज कहीं सुनाई भी नहीं देती। इसलिए अर्नाल्ड का यह कहना कि काव्य का विषय ऐसा होना चाहिए जो मनुष्य के अस्थायी भावों और संवेदनाओं से संबद्ध हो, असंगत नहीं है। काव्य में आधुनिकता या प्राचीनता का प्रश्न भी गौण है। महत्व का प्रश्न यह है कि उसमें अस्थायित्व की क्षमता है या नहीं। अस्थायित्व के अभाव में कोई भी रचना अभिजात कोटि में नहीं आ सकेगी। उदाहरण के रूप में अर्नाल्ड ने होमर के महाकाव्यों और एस्किलुस आदि यूनानी नाटककारों के दुखांतकों की ओर संकेत किया। आज से प्रायः कई हजार वर्ष पहले लिखे जाने पर भी उनकी आनंदप्रदता और मर्मस स्पर्शिता अक्षुण्ण है। अरस्तु का अनुगमन करते हुए अर्नाल्ड के काव्य में विचारों के निरूपण के बदले काव्य कार्य व्यापारों के निरूपण पर बल दिया। अर्नाल्ड ने प्राचीन यूनानी काव्यों की स्थायी सफलता के तीन कारण बताए हैं, कार्य व्यापार की गुणता, चरित्रों की उदात्तता तथा स्थितियों की तीव्रता। इनके अभाव में कोई भी काव्य स्थायित्व नहीं प्राप्त कर सकता। इस प्रसंग पर विचार करते हुए अर्नाल्ड ने कहा है कि यूनान काव्यों और आधुनिक काव्यों के उत्कर्ष में इन्हीं तीन कारणों से अंतर पड़ता है। यूनानी कवियों ने कार्य व्यापार को प्राथमिकता दी, हमारा ध्यान असहत विचारों और बिंबों पर टिका रहता है। उन्होंने पूर्णता पर बल दिया, हम खंडों पर बल देते हैं। वे अभिव्यंजना की अपेक्षा कार्य व्यापार को प्रधान मानते थे, हम कार्य व्यापार की अपेक्षा अभिव्यंजना को प्रधान मानते हैं। यही कारण है कि हमारे आज के काव्य में वह गरिमा नहीं आ पाती जो प्राचीन काव्य में वर्तमान है। काव्य रचना में अर्नाल्ड ने चार बातों पर ध्यान रखने का आग्रह किया। काव्य की विषय वस्तु महत्वपूर्ण होनी चाहिए जिसमें गहन और तीव्र भावों की संभावना हो। ख रचना प्रक्रिया के क्रम में कवि को संरचनात्मक अन्वित्ति अनुपात तथा सुसंगत गति या सामंजस्य पर ध्यान रखना चाहिए। ग वर्णन में भव्य शैली का प्रयोग आवश्यक है। भव्य शैली की धारणा अर्नाल्ड की वही है जो लोंगिनस की। घ काव्य के प्रयोजन के रूप में अर्नाल्ड ने आनंद के साथ नैतिक उन्नयन को हमेशा आगे रखा। यद्यपि अर्नाल्ड की भव्य शैली की धारणा लोंगिनस से ही गृहित है, फिर भी दोनों में हल्का सा अंतर है। जहां लोंगिनस ने भव्य शैली में सरलता के साथ अभिव्यंजना की समृद्धि को महत्व दिया है, वहां अर्नोल्ड ने सरलता के साथ संयम और सादगी की। यही कारण है कि अर्नोल्ड की भव्य शैली के उदाहरण होमर, दांते और मिल्टन ही हो पाते हैं। शेक्सपियर भी अलग छूट जाते हैं। कुछ तो प्रकृति से, कुछ अभिजात्यवादी आदर्शों के अनुगमन से और कुछ स्पैज्मोटिक आंदोलन के विरोध में अर्नोल्ड ने बार बार वस्तु और रूप, विषय और अभिव्यंजना के सामंजस्य पर बल दिया है। उनकी शैलीगत पूर्णता की मान्यता अनिवार्यतः अभिजात्यवादी ही है, जिसमें सरलता, संयम और परिष्कार का समन्वय है। जैसा पहले कहा जा चुका है कि अर्नोल्ड काव्य को सांस्कृतिक उन्नयन और परिष्करण का साधन मानते हैं, अतः उनके लिए काव्य केवल आनंद का नहीं बल्कि सांस्कृतिक उन्नयन का भी साधन है। इंग्लैंड के समसामयिक समाज की अर्नोल्ड ने बड़ी तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इंग्लैंड का अभिजात वर्ग बर्बर और निष्प्रभाव हो चुका है, मध्य वर्ग भोग में लीन है और निम्न वर्ग का भी अभी उत्थान नहीं हुआ है। इस स्थिति में सांस्कृतिक दृष्टि से उन्हें अभिजात वर्ग तथा निम्न वर्ग निरुपयोगी प्रतीत होता है। इनसे कोई आशा नहीं की जा सकती। यदि सांस्कृतिक उन्नयन की कहीं क्षीण आशा है तो मध्यम वर्ग में, किंतु मध्यम वर्ग भी विषयासक्त और भोगलीन हो गया है, जो औद्योगिक क्रांति से लब्ध आर्थिक संपन्नता का परिणाम है। यदि काव्य को और उसके साथ संस्कृति को बचाना है तो मध्यम वर्ग को ही सुधारने की जरूरत है, इसकी रुचि को परिमार्जित और परिष्कृत करना है। जब तक जनसाधारण निम्न वर्ग का उत्थान नहीं होता, तब तक उसके रुचि परिष्कार का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए अर्नोल्ड की आलोचना का प्रमुख उद्देश्य मध्यम वर्ग का रुचि परिष्कार है, जिसे उन्होंने बार बार दोहराया है। अर्नोल्ड के पहले के या उसके समसामयिक भी कुछ आलोचक राजनीतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक जैसे व्यवहारिक मानदंडों के से काव्य की आलोचना में व्यापृत थे, जिसमें काव्य का वास्तविक मूल्यांकन सहज ही उपेक्षित हो जाता था। यह स्थिति अर्नोल्ड को अभिमत नहीं थी। उनका विचार था, और जो सही था, कि काव्य का विवेचन विश्लेषण सही किसी काव्य बाह्य मानदंड से नहीं होना चाहिए। यदि उसमें राजनीति, इतिहास आदि विषय आ जाते हैं तो काव्य का मूल प्रयोजन गौण पड़ जाता है, जबकि प्रधानता उसकी होनी चाहिए। इसलिए आवश्यक है कि आलोचक राजनीतिक पक्षपात, ऐतिहासिक मोह या धार्मिक संकीर्णता से परिचालित न हो। उन्हें स्वतंत्र तथा निष्पक्ष भाव से किसी काव्य के उत्कर्ष अपकर्ष का मूल्यांकन करने में प्रवृत्त होना चाहिए। अर्नोल्ड के अनुसार आलोचना संसार में जो भी उत्तम ज्ञान तथा चिंतन है उसके अधिगम एवं प्रचार का, और इस प्रकार ताजे और सच्चे विचारों के प्रभाव के संस्थापन का निस्संग प्रयास है। अर्नोल्ड की दृष्टि में सांस्कृतिक तथा आलोचना अभिन्न है। संस्कृति का अर्थ है मनोगत वस्तुओं की उद्देश्य मुक्त जिज्ञासा, अर्थात ऐसी जिज्ञासा जो स्वयं साध्य हो, किसी अन्य प्रयोजन का साधन नहीं हो। आलोचना निष्पक्षता तथा निसंगता है। संस्कृति और आलोचना दोनों का लक्ष्य पूर्णता है, दोनों का साध्य जिज्ञासा है, दोनों का धर्म निसंगता है। निसंगता की इस धारणा के लिए अर्नोल्ड फ्रांसीसी आलोचक सेंट वह की ऋणी हैं। हालांकि दोनों की निसंगता में सैद्धांतिक तो नहीं किंतु व्यावहारिक अंतर दिखाई देता है। सेंट वह की निसंगता का रूप है आलोचक की अपनी न तो कोई कला होनी चाहिए, न कोई विशिष्ट शैली, न प्रचार का कोई खास दृष्टिकोण, न धर्म विषय कोई प्रबल झुकाव, न जीवन के प्रति कोई भाव, न किसी की स्वीकृति का आग्रह, न कला के किसी रूप में अभिरुचि। उसमें न तो सार्वजनात्मक प्रतिभा होनी चाहिए और न दार्शनिक मतवाद। इस तरह का कोई भी चित्त विक्षेप उसकी वास्तविक आलोचनात्मक शक्ति को सीमित कर देगा। उसे समदर्शी होना चाहिए, अपरिमेय कुतूहल उसका विशिष्ट गुण होना चाहिए, जो सभी देशों के सभी व्यक्तियों के साथ की अनंत यात्रा में उसके संबल का काम करे। उसे सहिष्णु, निष्पक्ष, संतुलित और जिज्ञासु होना चाहिए। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह छुड़श्य धारा निश्चितता दुर्त्या है जिस पर शायद ही कोई आलोचक कभी चला हो। इसलिए यदि अर्नोल्ड भी नहीं चल पाए तो क्या आश्चर्य। सेंट वह द्वारा विहित अनुपात में अर्नोल्ड ने निसंगता का अनुवर्तन भले ही न किया हो, किंतु इच्छा और चेष्टा उनकी अवश्य रही। इसमें जब भी बाधा पड़ी है तो उनके नैतिक पूर्वग्रहों के कारण। विक्टोरिया युग के दूसरे आलोचक जैसे जॉन रस्किन और टॉमस क्लाइल भी नैतिकतावादी थे। यही नहीं, वाल्टर पेटर के जैसा कलावादी भी नैतिकता से पल्ला नहीं छुड़ा सका। व्यापक अर्थ में अर्नाल्ड की आलोचना का उद्देश्य है संस्कृति का उन्नयन। फलतः साहित्य के आलोचक का कार्य है संस्कृति के उस भाग का उन्नयन जो साहित्य के ज्ञान पर आश्रित है। जैसा स्कॉट जेम्स ने प्रतिपादित किया है, अर्नाल्ड के निसंग प्रयास में तीन बातें अंतर्निहित है। पहला, आलोचक का कर्तव्य है कि पहले वह विषय को जाने समझे। दूसरा, जानने समझने के बाद उसका दूसरा कार्य है वह उन विचारों को दूसरे तक पहुँचाए जिससे अच्छे विचारों का प्रसार हो। तीसरा, ऐसे करके वह भली सृजनात्मक प्रतिभा के लिए अनुकूल वातावरण और उर्वर भूमि तैयार करे। काव्यालोचन में दार्शनिकता के अतिरिक्त के भी अर्नाल्ड विरोधी हैं। उनका कहना है कि इससे आलोचना अमूर्त हो जाती है और अपने उद्देश्य में सफल नहीं होती। आलोचना वह साधन है जिससे मानव जीवन को अधिक स्वस्थ, सार्थक और फलप्रद बनाया जा सकता है। दार्शनिक अमूर्तता उसमें बाधक होती है। इसी के समानांतर उन्होंने एक और त्रुटि की ओर संकेत किया है। उन्होंने कहा है कि आलोचना के तीन प्रकार हैं, क ऐतिहासिक, ख वैयक्तिक, ग वास्तविक। अर्नाल्ड ने इनमें प्रथम दो से बचने की सलाह दी है क्योंकि उनकी दृष्टि में ये दोनों आलोचना है ही नहीं। उन्होंने साहित्य के इतिहास और साहित्य की आलोचना में विभाजक रेखा खींची है। साहित्य के इतिहास का विषय है प्रवृत्तियों और विकास सोपानों का विवरण, किंतु साहित्य की आलोचना का विषय है विशेष कृतियों के गुण दोषों का विवेचन। उसमें इतिहास आता ही नहीं, वह केवल यह बताती है कि कोई कृति अपने आप में कैसी है। यह पार्थक्य प्रतिपादित करते समय अर्नाल्ड के सम्मुख संभवतः मैकाले और कलाइल जैसे आलोचक थे जो किसी छवि या काव्य का मूल्यांकन करते समय उस युग के इतिहास का विवेचन करने लगते हैं। अर्नाल्ड के अनुसार इस तरह का ऐतिहासिक विवेचन कवि या काव्य के अंतर्निहित वैशिष्ट के उद्घाटन में सर्वथा अक्षम अतः है। व्यक्तिगत आलोचना को भी अर्नाल्ड ने है माना है क्योंकि उसमें व्यक्तिगत रुचि, अरुचि, राग द्वेष का अस्तित्व अनिवार्य हो जाता है। स्वभावतः काव्यत्व का समुचित निर्धारण नहीं हो पाता। प्रकारांतर से यह आलोचना प्रभाववादी बन जाती है। निष्कर्ष की एक निष्ठा और निश्चितता के अभाव के कारण उन्होंने इसे अकरात्ग्रस्त बताकर ऐतिहासिक आलोचना के समान ही हैता की कोटी में डाल दिया है। अर्नाल्ड के अनुसार वास्तविक आलोचना ही आलोचक के लिए काम में है। जिस प्रकार उन्होंने ऐतिहासिक या वैयक्तिक आलोचना की व्याख्या की है, उस प्रकार वास्तविक आलोचना के संबंध में स्पष्ट कुछ नहीं कहा है, किंतु आलोचना के संबंध में उनकी मान्यताओं के विश्लेषण से वास्तविक आलोचना की निम्नलिखित विशेषताएं मानी जानी चाहिए। क, काव्य सौंदर्य और काव्य सत्य के निर्धारण नियमों की सीमा में उसे जीवन की आलोचना होना चाहिए। ख, उसमें निसंगता होनी चाहिए। ग, उसमें यह क्षमता होनी चाहिए कि संसार में जो भी सर्वोत्तम ज्ञान और विचार उपलब्ध है उनके आलोक में ताजे विचारों को उत्पन्न कर सके, साथ ही उन्हें प्रचारित भी कर सके। यदि आलोचना कुछ सीखने और विचारने का साधन नहीं बनती तो वह अपने लक्ष्य से च्युत होती है। अर्नाल्ड काव्य में नैतिकता के प्रबल आग्रही हैं। उनका यहाँ तक कहना है कि नैतिक विचारों का विद्रोही काव्य जीवन की विद्रोही काव्य है। नैतिक विचारों से उदासीन काव्य जीवन से उदासीन काव्य है। काव्य और जीवन में नैतिकता की इतनी जोरदार वकालत शायद ही किसी ने की हो। अर्नाल्ड की आलोचना बहुत ही व्यापक और उदार है। उन्होंने देखा है कि आलोचना के क्षेत्र में फ्रांस और जर्मनी आगे हैं। इस त्रुटि को दूर करने का उन्होंने सुगम मार्ग यह प्रतीत हुआ कि आलोचना को राष्ट्रीय सीमाओं में बांधने के बदले उसके व्यापक रूप को अपनाया जाए। उन्होंने संपूर्ण यूरोप को ही नहीं बल्कि समस्त सभ्य राष्ट्रों को एक साहित्यिक और बौद्धिक संघ के रूप में देखने का आग्रह किया और उसकी चिंतन धारा को ग्रहण करने की सलाह दी। उन्होंने अंग्रेजी आलोचना की पृथकतावादी नीति तथा संकीर्णता को छोड़ने का सुझाव रखा। फ्रांसीसी, जर्मन और आधुनिक साहित्यों के साथ उन्होंने ग्रीक, लैटिन आदि प्राचीन साहित्यों के अध्ययन मनन को भी अनिवार्य बताया और इस प्रकार उन्होंने उस आलोचना पद्धति की नींव डाली जिसे आज तुलनात्मक आलोचना कहा जाता है। इससे अर्नाल्ड की वैचारिक उदारता ही प्रकट नहीं होती बल्कि ज्ञान के क्षेत्र में देशकाल के बंधन का विरोध भी परिलक्षित होता है। जिसने इंग्लैंड के अभिजात वर्ग को बर्बर कहने में संकोच नहीं किया, उसकी यह दृष्टि और प्रवृत्ति आश्चर्यकर नहीं। अर्नाल्ड ने अभिजात साहित्य के तीन भेद किए हैं, क संदिग्ध, ख मिथ्या और ग वास्तविक। संदिग्ध अभिजात साहित्य वह है जो अभिजात को श्रेणी में अभी आया नहीं है किंतु उसके आने की संभावना है। ऐसे साहित्य का सूक्ष्म परीक्षण होना चाहिए और परीक्षण के बाद यदि वह अभिजात की कसौटी पर खड़ा उतरता है तो उसे स्वीकृति मिलनी चाहिए। मिथ्या अभिजात साहित्य वह है जिसमें बाहरी चमक दमक तो होती है किंतु आंतरिक गंभीरता नहीं होती। उसका प्रभाव तत्काल तो अनुकूल पड़ता है किंतु परीक्षण के पश्चात उसकी निरिक्तता प्रकट हो जाती है। वास्तविक या सच्चा अभिजात साहित्य वह है जिससे आनंद और संतावना दोनों की प्राप्ति होती है। किट्स के अनुसार ऐसी ही रमणीय वस्तु शाश्वत आनंद का साधन बनती है। प्रश्न उठता है कि ऐसे साहित्य की परख कैसे की जाए। इसके लिए अर्नोल्ड ने एक पद्धति सुझाई है जिसे उन्होंने निकष पद्धति कहा है। जैसे किसी वस्तु को तोलने के लिए बाट काम में लाए जाते हैं, वैसे ही काव्य के महत्व और सौंदर्य को आंकने के लिए भी महान कवियों की रचनाओं से सौंदर्य संचलित उत्कृष्टतम पंक्तियां स्मरण रखनी चाहिए और किसी काव्य की उत्तमता की परीक्षा करने के लिए उन्हें ही निष्कर्ष बनाना चाहिए। यदि परीक्षा काव्य वस्तु और अभिवंजना की दृष्टि से उन उत्कृष्टतम पंक्तियों के समकक्ष हो तो उसका उत्कर्ष स्वीकार किया जा सकता है। द स्टडी ऑफ पोइट्री नामक अपने निबंध में अर्नोल्ड ने होमर, दांते, शेक्सपियर और मिल्टन से कुछ पंक्तियां निष्कर्ष पद्धति के निर्देशन के रूप में उद्धृत किए हैं। इस निष्कर्ष पद्धति की युक्ति युक्तता संदेह से परे नहीं है। इसमें कई प्रकार की असंगतियां आ खड़ी होती हैं। क 1953 ईस्वी के अपने कविता संग्रह की भूमिका में अर्नोल्ड ने बड़ी दृढ़ता से कहा है कि काव्य सौंदर्य की चर्चा के प्रसंग में एक दो पंक्तियां या संक्षिप्त उद्धरण बहुत उपयोगी नहीं होते। काव्य का वास्तविक उत्कर्ष उसके समग्र रूप और व्यापक वैशिष्ट में ही होना चाहिए। इस विचार का निष्कर्ष पद्धति के सिद्धांत से स्पष्ट विरोध है। एक ओर काव्य सौंदर्य के निर्धारण में संक्षिप्त उद्धरणों को अनुपयोगी मानना और दूसरी ओर संक्षिप्त उद्धरणों को ही सौंदर्य की उत्तमता का निष्कर्ष बनाना परस्पर विरोधी मान्यताएं हैं। ख महान कवि के समान महान आलोचक की भी संदृष्टि विराट होनी चाहिए। समग्रता का आकलन करने वाली उस संदृष्टि की दृष्टि कुछ व्यक्तियों से कैसी हो सकती है। ग फिर कवि या काव्य की किन्हीं भी पंक्तियों के संबंध में यह कैसे कहा जा सकता है कि वे ही पंक्तियां उत्कृष्टतम है। यदि ऐसी बात हो तो वह काव्य अभिजात या महान कहलाने का अधिकारी ही नहीं रह जाता। दो चार पंक्तियां तो अतिसाधारण कवि भी की भी उत्कृष्ट हो जाती हैं। घ अंततः यह पद्धति आत्मनिष्ठ और प्रभाववादी बन जाती है जिसका कोई निर्भ्रांत मानदंड नहीं रह जाता, क्योंकि छिन्न भिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न अंश उत्कृष्टतम प्रतीत हो सकते हैं। अतः अर्नोल्ड ने जिसे वास्तविक आलोचना या मूल्यांकन कहा है उससे भी इसका विरोध अस्पष्ट है। कहने का अभिप्राय यह है कि अर्नोल्ड द्वारा कल्पित या निष्कर्ष पद्धति व्यवहारिकता के निष्कर्ष पर खरी नहीं उतरती। अर्नोल्ड ने काव्य को जीवन की आलोचना कहा है। कुछ हेर फेर के साथ यह उक्ति उनके निबंधों में चार बार मिलती है। इस उक्ति के अर्थ को लेकर उत्तरवर्ती आलोचकों में काफी मतभेद दिखाई पड़ता है। भरत के रस सूत्र के समान विभिन्न विद्वानों ने इस उक्ति की भिन्न भिन्न व्याख्याएं की हैं, जिनके जाल में अर्नोल्ड का वास्तविक अभिप्राय छिप सा गया है। एक विद्वान का कहना है कि जीवन की आलोचना का अर्थ जीवन की कल्पनात्मक पुनर्निर्मित है। एक दूसरे विद्वान का कहना है कि अरस्तु की अनुकृति की तरह अर्नोल्ड के जीवन की आलोचना का अर्थ है जीवन का चित्रण। स्वयं अर्नोल्ड के अनुसार जीवन की आलोचना का अर्थ है जीवन में उद्धत और गंभीर विचारों का विनियोग। किसी कवि की महत्ता इसमें है कि वह जीवन में विचारों का कितना शक्तिशाली तथा सुंदर विनियोग करता है। तात्पर्य की इस प्रश्न के समाधान में कि कैसे जीना चाहिए। काव्य जीवन का वैसा चित्रण नहीं है जैसा फोटो में पाया जाता है। उसमें आदर्श जीवन का निरूपण रहता है जिसकी उपलब्धि के लिए प्रयास अपेक्षित है। दूसरे शब्दों में कहे कि काव्य में निरूपित विचारों का जीवन के साथ सामंजस्य होना चाहिए। काव्य में काव्य शब्द और काव्य सौंदर्य का समन्वय होना चाहिए। जहाँ यह नहीं है वहाँ काव्यत्व भी नहीं है। काव्य शत्य में से अर्नोल्ड का अभिप्राय विषय वस्तु की मूल्यवत्ता से है और काव्य सौंदर्य का अभिप्राय अभिव्यंजना के चारत्व से है। ऐसा ही काव्य आनंद दे सकता है और संतावना भी। सारांश यह है कि जीवन की आलोचना का अर्थ है जीवन का आदर्शीकृत पुनर्निर्माण। जीवन की आलोचना की उक्ति को लेकर जो बावेला मचाया गया है वह या तो अपने प्रौढ़ प्रदर्शन के लिए है या अर्नोल्ड में दोष निकालने के लिए। अर्नोल्ड ने बड़ी सीधी सादी बात कही है। वस्तुतः कला को जीवन की आलोचना कहने के पीछे अर्नोल्ड का उद्देश्य था उन मतवादों का खंडन करना जो काव्य में जीवन के चित्रण को उपेक्षणीय मानते थे। ऐसे तीन मुख्य मतवाद थे, एक तो कलावाद जो कला के लिए का आदर्श प्रचारित करता था, दूसरा था स्पैज़मोटिक काव्यांदोलन जो कवि की केवल आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति पर बल देता था, तीसरा था 19वीं शताब्दी के प्रथम चरण का रोमांटिक आंदोलन जो कवि की व्यक्तिगत अनुभूतियों की अभिव्यक्ति को भी प्रधानता देता था। अर्नाल्ड के पूर्ववर्ती इन तीनों मतवादों में जीवन की उपेक्षा थी जो अर्नाल्ड के स्वीकार नहीं थी, अतः उन्होंने बल देकर यह कहा कि जीवन निरपेक्ष काव्य ही नहीं है। उनकी उक्ति भी आलोचना का अर्थ व्याख्या है, अर्थात काव्य में जीवन की व्याख्या होनी चाहिए, जीवन की समस्याओं का निरूपण होना चाहिए। अर्नाल्ड का कहना है कि साहित्य या कला की महान कृतियों की उत्पत्ति में सृजन शक्ति का उपयोग सभी युगों और सभी परिस्थितियों में संभव नहीं होता। जब तक अनुकूल वातावरण उपलब्ध नहीं होता तब तक कोई प्रयास सफल नहीं हो सकता। अनुकूल परिस्थिति और वातावरण के आने तक उसकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जिन उपकरणों और तत्वों से महान कृत्यों का उद्भव होता है वे सदा प्राप्त नहीं होते। साहित्य में विचार ही वे तत्व हैं जिनका सृजन शक्ति उपयोग करती है, और सर्वोत्तम विचार वे हैं जो उस युग में प्रचलित हों। प्रचलित विचारों के ग्रहण करके ही सृजनात्मक साहित्यिक प्रतिभा क्रियाशील होती है। वह नए विचारों का अन्वेषण नहीं करती, क्योंकि नए विचारों का अन्वेषण दार्शनिक का नाम है काम है। साहित्य के प्रतिभाशाली स्पष्टता का काम तो संश्लेषण और उद्घाटन है, विश्लेषण और अन्वेषण नहीं। इच्छा मात्र से उत्कृष्ट साहित्य के योग्य उर्वर वातावरण नहीं मिलता। यही कारण है कि साहित्य में महान सृजनात्मक युग अत्यंत विरल हुआ करता है। अति विशिष्ट साहित्यिक सृजन में दो शक्तियाँ का एक ही भाव अत्यंत अपेक्षित है, और वे हैं मनुष्य की शक्ति तथा क्षण की शक्ति। समय की शक्ति के अभाव में मनुष्य की शक्ति का बहुत महत्व नहीं होता। सृजनात्मक शक्ति के विवर्तन के लिए कुछ निश्चित तत्व आवश्यक है जो सृजनात्मक शक्ति के नियंत्रण में ही नहीं रहते। जब तक वे तत्व उपलब्ध नहीं हो जाते तब तक सृजनात्मक शक्ति निष्क्रिय पड़ी रहती है। इसलिए मनुष्य के साथ अनुकूल समय का महत्व निसंदिग्ध है। काव्य में उपयोग के लिए कवि को जीवन और संसार का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। चूंकि आधुनिक युग में जीवन और संसार बहुत जटिल हो गए हैं, इसलिए आधुनिक कवि की सृष्टि का संदिग्ध मूल्य तभी संभव है जब उसके पीछे विपुल आलोचनात्मक श्रम लगा हो। तत्पर्य की कर इत्री प्रतिभा के साथ भाव इत्री प्रतिभा का समन्वय आवश्यक है। भाव इत्री प्रतिभा का महत्व स्वीकार करते हुए भी अर्नाल्ड का यह मानते हैं कि उसकी तुलना में कार्य इत्री प्रतिभा श्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में आलोचना की उपेक्षा अपेक्षा काव्य श्रेष्ठ है, आलोचक की अपेक्षा कवि श्रेष्ठ है। अर्नाल्ड प्रसिद्ध फ्रांसीसी आलोचक सेंत वह से बहुत प्रभावित थे। स्वभावतः उनके सिद्धांतों को उन्होंने अनेकत्र स्वीकार किया है। सेंत वह का ही अनुकरण करते हुए अर्नाल्ड ने कवि के जीवन और उसकी कृति में संबंध स्थापन का प्रश्न उठाया है। अर्नाल्ड का कहना है कि परिवेश से अलग रखकर कवि की या तो उसकी कृति का विचार संभव नहीं है। किसी साहित्यिक कृति में कवि के व्यक्तित्व की निर्णायक भूमिका होती है और कृति पर उसका प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए कवि के जीवन को बिना जाने उसकी कृति की समुचित आलोचना नहीं हो सकती। कृति के सम्यक बोध के लिए कवि के जीवन की मुख्य घटनाओं, तथ्यों, तिथियों, परिवार के सदस्यों, यहाँ तक कि मित्र मंडली आदि से भी संबंध जानकारी अपेक्षित है। जीवनी विषयक यह विवरण और इससे प्राप्त कवि के व्यक्तित्व का परिज्ञान ही उसकी रचनाओं के समुचित मूल्यांकन में सहायक हो सकता है। अर्थात किसी कृति के मूल्यांकन में उसके कर्ता की जीवनी का ज्ञान अनिवार्य है। इस सिद्धांत को सर्वथा निरुपयोगी तो नहीं कहा जा सकता, किंतु इसे अनिवार्य भी नहीं माना जा सकता। इसलिए इलियट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आलोचक का ध्यान कृति पर होना चाहिए, कृतिकार पर नहीं। इस सिद्धांत को निसंगता के प्रबल आग्रही अर्नाल्ड भी तटस्थ भाव से व्यवहार में नहीं ला सके हैं। कवि की कृति और उसकी जीवनी में अनिवार्य संबंध हो ही यह जरूरी नहीं है। उदाहरणार्थ उसके जीवन में अनैतिक घटनाएं हुई हो सकती है, किंतु रचना बिल्कुल नैतिक हो सकती है। जीवन की अनैतिक घटनाओं से परिचय हो जाने पर यह सर्वथा संभव है कि आलोचक को काव्य में भी अनैतिकता दिखने लगे। प्रमाण स्वरूप स्वयं अर्नाल्ड का नैतिक आग्रह और पक्षपात उनके मूल्यांकन में बाधक हुआ है, जैसा शेली या किट्स की आलोचना में स्पष्ट है। जहाँ भी अर्नाल्ड नैतिक त्रुटियाँ पाते हैं वहाँ उनका संतुलन बाधित हो जाता है और वे काव्य को सदोष मानने लगते हैं। अर्नाल्ड दो प्रकार के लेखक मानते हैं, एक तो प्रतिभा संपन्न और दूसरे योग्यता संपन्न। जीवन की आलोचना दोनों का लक्ष्य हो सकती है, किंतु दोनों में अंतर यह है कि प्रतिभा संपन्न लेखकों की आलोचना मानव जाति को स्थायी रूप से स्वीकार्य होती है, जिसमें देशकाल की सीमा नहीं होती। इसके प्रतिकूल योग्यता संपन्न लेखकों की रचनाएं अस्थायी होती हैं, साथ ही देशकाल की सीमा से बद्ध भी। अधिकतर लेखक इसी श्रेणी में आते हैं जो अपने देश या काल की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर पाते। मूल्यांकन। अर्नाल्ड को प्रथम आधुनिक आलोचक या महान आधुनिक आलोचक कहा गया है, क्योंकि अंग्रेजी की आधुनिक आलोचना का सूत्रपात उन्हीं से होता है। उनके पहले ही एक नाम उल्लेख है और वह है कॉलरिज का, किंतु दोनों ही दृष्टि में भेद है। कॉलरिज काव्य के अंतर्निहित तत्वों के अधीति अन्वेषक थे और उनकी दृष्टि मूलतः सैद्धांतिक थी। इसके विपरीत अर्नाल्ड की दृष्टि विशुद्ध व्यवहारिक थी। वे आलोचक के लिए अरस्तु या लोंगिनुस होना आवश्यक नहीं मानते थे, जो विरेचन या उद्दात जैसे सिद्धांतों का निरूपण कर काव्य में उसका विनियोग करे। वे आलोचक को मनोविज्ञानी या सौंदर्य शास्त्री के रूप में भी देखने के आग्रही नहीं थे, जो भंगी भेद से भाव्य का विवेचन करे और बताए कि कल्पना या रचना प्रक्रिया सौंदर्य क्या है। वे आलोचना को दर्शन की शाखा स्वीकार करने को भी तैयार नहीं थे। क्लासिकल और रोमांटिक जैसे भेदों के पचड़े में पड़ना भी उन्हें अभिमत नहीं था। वे आलोचना की स्वतंत्रता स्वायत्तता के पक्षधर थे और उसे काव्य के गुण दोष परीक्षण तथा पाठक वर्ग के रुचि परिष्कार में विनियोजित करना चाहते थे। दूसरा, वंग शैवत्व के संकेत का उपविरण करते हुए अर्नाल्ड ने काव्य को मानसिक स्वास्थ्य एवं संतावना का साधन घोषित किया और बल देकर कहा है कि काव्य के द्वारा मनुष्य का नैतिक उन्नयन किया जा सकता है तथा उसे सभ्य बनाया जा सकता है। उनका विश्वास था कि समाज के आध्यात्मिक आरोग्य के लिए सांस्कृतिक उत्कर्ष अनिवार्य है और काव्य से बढ़कर सांस्कृतिक उत्कर्ष का पोषक और कुछ नहीं है। स्पष्टतः काव्य को वे सभ्यता और संस्कृति का अपरिहार्य अंगीकार करते थे। तीसरा, अर्नाल्ड ने अव्यवहित पूर्व के रोमांटिक सिद्धांतों का प्रत्याख्यान और युगानुरूप नवीन मान्यताओं के निर्माण एवं स्थापना के लिए प्राचीन यूनानी अभिजातवादी सिद्धांतों को आदर्श बनाया। होमर, यूनानी दुखांतकार अरस्तु आदि उनके प्रेरणा स्रोत थे। एक तरह से इंग्लैंड में उन्होंने यूनानी पुनर्जीवन की भी भूमि तैयार की और शास्त्रवाद का महत्व प्रतिपादित किया। उन्होंने प्राचीन और नवीन के बीच सेतु का काम किया और बल देकर कहा कि परंपरा से विच्छिन्न नवीनता अपूर्ण तथा अनुपादेय है। उनके इस सूत्र को इलियट ने आगे बढ़ाया। चौथा, अर्नाल्ड की आलोचना केवल काव्य तक सीमित नहीं है, उसकी सीमा का विस्तार संस्कृति, धर्म, शिक्षा आदि तक है। काव्य को जीवन की आलोचना कहने का अभिप्राय है जीवन को समग्रता में देखना और जीवन के किसी पक्ष की उपेक्षा न करना। जब काव्य जीवन सापेक्ष हुआ, तब आलोचना जीवन सापेक्ष कैसे नहीं होगी। स्वभावतः आलोचना को उन्होंने बृहत्तर परिधि में रखकर देखने का सुझाव दिया, क्योंकि उनके अनुसार काव्य का प्रयोजन केवल आनंद देना नहीं बल्कि जीवन को सार्थक और समृद्ध बनाना है। जब आलोचक किसी कविता पर विचार करता है तो उसे साथ साथ कवि और तदयुगीन सभ्यता संस्कृति के स्वरूप पर भी ध्यान देना चाहिए। पांचवा, समस्त यूरोप को एक बौद्धिक संघ के रूप में देखने का प्रस्ताव अर्नाल्ड के उस विशाल वैचारिक परिप्रेक्ष्य को आलोकित करता है जिसमें देशकाल की संकीर्णता का कहीं स्थान नहीं है। अपने देश के संकीर्णताग्रस्त अभिजात वर्ग को बर्बर कहने तक में अर्नाल्ड को कोई संकोच नहीं हुआ। उन्होंने अंग्रेज जाति की पृथकतावादी नीति एवं भावना का जोरदार विरोध किया और अपने साहित्य को यूरोप के अन्य नवीन प्राचीन साहित्यों के बीच रखकर समझने परखने का प्रस्ताव किया, जिसके फलस्वरूप तुलनात्मक साहित्य का क्षितिज विस्तृत हुआ। अंग्रेज कवियों और लेखकों के समानांतर यूनान और इटली से लेकर जर्मनी और फ्रांस तक के कवियों लेखकों की रचनाओं के उद्धरण उनके अध्ययन की व्यापकता के प्रमाण हैं। ये उद्धरण विस्तृत फलक पर साहित्य के आस्वादन और मूल्यांकन की प्रेरणा भी देते हैं, रुचि भी जगाते हैं। इलियट ने अपने लेखन में अर्नाल्ड के इस विचार को भी पल्लवित किया है। छठा, अर्नाल्ड के पूर्ववर्ती आलोचक राजनीतिक, ऐतिहासिक आदि पूर्वग्रहों से आक्रांत थे। शुद्ध साहित्यिक विवेचन की उनमें कमी थी। अर्नाल्ड ने कहा कि साहित्यिक मानदंड साहित्य के मूल्यांकन में बाधक है, अतः उनका परित्याग आवश्यक है। आलोचक को निस्संग होना चाहिए, अर्थात साहित्य के बोध आस्वाद या मूल्यांकन में किसी ऐसे तत्व को प्रमुखता नहीं देनी चाहिए जिसका साहित्य से साक्षात संबंध न हो। निस्संगता वाला सूत्र भी इलियट को अर्नाल्ड से प्राप्त हुआ है। सातवां, अर्नाल्ड ने सेंट बफ का अनुसरण करते हुए मूल्यांकन की प्रामाणिकता के लिए रचना के साथ रचनाकार संबंधी व्यक्तिक जानकारी को उपादेय माना। सेंत वह का कहना है कि किसी रचना को ठीक से समझने के लिए रचनाकार उसके युग और वातावरण का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि युग और वातावरण से निरपेक्ष रचनाकार का अस्तित्व नहीं होता। रचनाकार का व्यक्ति उसकी रचना के रूप ग्रहण करने का अनिवार्य आधार है, इसलिए जब तक रचनाकार के व्यक्तित्व से संबंध जानकारी उपलब्ध न हो तब तक रचना की विशेषताओं का आकलन समीचीन नहीं होगा। तात्पर्य कि किसी रचना को समझने के लिए रचनाकार की जीवनी का ज्ञान अपेक्षित है। यूं सिद्धांत रूप में यह बात तो संगत ही प्रतीत होता है, किंतु व्यवहार में कठिनाइयों से मुक्त नहीं है। किसी रचनाकार की जीवनी सदा उसकी रचना की समझने में साधक ही नहीं होती, कभी कभी बाधक भी होती है। उदाहरणार्थ रचनाकार के चरित्र की नैतिक निर्बलताएं जब उसकी रचना पर आरोपित कर ली जाती है तब उत्तम रचना का आस्वादन भी विघ्नित हो जाता है, स्वयं अर्नाल्ड के ही नैतिक पूर्वग्रह शैली या किट्स के मूल्यांकन में बाधक हुए हैं। सच्ची आलोचना का लक्ष्य कवि नहीं काव्य है के उद्घोषक तथा रचना से रचनाकार को सर्वथा पृथक रखने के आग्रही इलियट भी शैली और किट्स की आलोचना के प्रसंग में तटस्थ नहीं रह सके हैं। इसलिए रचनाकार की जीवनी का ज्ञान सर्वथा निरापद मानदंड नहीं है। आठवां, काव्य की उत्तमता के निर्धारण के लिए अर्नाल्ड द्वारा प्रस्तावित निष्कर्ष पद्धति भी निर्दोष नहीं है, यह हम देख चुके हैं। जीवनी की तरह निष्कर्ष पद्धति भी किसी रचना के मूल्यांकन में सहायक हो सकती है, किंतु सर्वदा और सर्वथा विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती। नौवां, अर्नाल्ड ने वस्तु और रूप अर्थात विषय और अभिव्यंजना के सामंजस्य पर बल दिया है और दोनों को समान महत्व का बताया है। उनकी शैली विषयक धारणा मूलतः अभिजात्यवादी है, जिसमें सरलता संयम और परिष्कार अनुस्यूत है। इलियट भी अभिजात्यवाद के पक्षधर हैं। दसवां, प्रगीत में अर्नाल्ड की कोई रुचि नहीं है, यह शायद इसलिए कि प्रगीत आत्मनिष्ठ और भावोच्छल होता है और ये दोनों विशेषताएं अभिजात्यवाद के विपरीत पड़ती हैं। अरस्तु ने भी प्रगति के प्रति उदासीनता ही दिखाई है। ग्यारहवां, अर्नाल्ड की आलोचना में दार्शनिक गूढ़ता अथवा अमूर्तता नहीं है, उनके विचार स्पष्ट तथा संगत एवं अभिव्यंजना प्रांजल तथा सुगम है। बर्बर और भोगसक्त जन समुदाय में साहित्यिक रुचि जगाने के लिए ऐसी ही आलोचना अपेक्षित थी। उन्होंने पाठक वर्ग की बौद्धिक क्षमता को ध्यान में रखकर अपनी आलोचना लिखी है। इलियट के मत से अर्नाल्ड साहित्य के प्रचारक हैं, आलोचक नहीं। ऐसा कहते समय इलियट अर्नाल्ड के युग तथा वातावरण दोनों के नज़रअंदाज कर देते हैं, साथ ही यह भी भूल जाते हैं कि उनकी आलोचना के अधिकतर सूत्र अर्नाल्ड के द्वारा ही उद्भावित हैं। यह और बात है कि अर्नाल्ड में जो बातें बीज रूप में हैं वे इलियट में पुष्पित पल्लवित हो गई है। स्थूलता क्षुम्ता सूक्ष्मता में परिणत हो गई हैं, पर उच्च निसंदेह अर्नाल्ड ही है। जिस युग में और जिस उद्देश्य को लेकर अर्नाल्ड आलोचना में प्रवृत्त हुए थे उसे यदि ध्यान में रखें तो उनकी आलोचना का महत्व मानना पड़ता है। यह ठीक है कि आज अर्नाल्ड की मान्यताओं मानदंडों तथा पद्धतियों की प्रासंगिकता क्षीण पड़ गई है, कारण कि अंग्रेजी आलोचना ने तब से बहुत लंबी दूरी तय कर ली है। फिर भी आलोचक के रूप में उनकी गरिमा अक्षुण्ण है। अंग्रेजी आलोचना के विकास पथ के वे ऐसे मोड़ हैं जिसे छोड़कर न तो पीछे के विकास का सम्यक आकलन संभव है और न आगे के विकास का। स्कॉट जेम्स ने अर्नाल्ड की विशेषताओं का निम्नलिखित संदर्भ में बहुत समीचीन आकलन किया है। हम में से कौन उस आलोचक को श्रद्धांजलि नहीं अर्पित करेगा जिसके संबंध में सच्चाई से यह कहा जा सकता है कि उसने जीवन यंत्र के दांते से अपने को मुक्त किया, उसने ज्ञान के लिए ज्ञान का अनुवर्तन किया, उसने माधुर्य और आलोक के लिए विचारों में अभिरुचि ली, उसने उत्तम विचारों के प्रसार तथा जीवन में विनियोग के लिए निरंतर प्रयास किया। उसने जो नूतन ज्ञान प्राप्त किया था उसे संसार में संचारित किया और विश्व के विचार प्रवाह के केंद्र में सदा रहने की चेष्टा करते हुए उसने क्षत्रियता की भ्रांतियों को दूर रखा।